ओम शांति। हम सबके बीच में साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई विशेष अनमोल रतन चक्रधारी दीदी जी पहुंचे हैं। सभी एक हाथ की ताली के द्वारा स्वागत करेंगे सभी। दीदी, आप वुमेन्स विंग के चेयरपर्सन हैं, आप रशिया के सेंटर्स के भी इंचार्ज हैं। दीदी को कौन नहीं जानते, कितना प्यारी तपस्वी, जिनकी रूप ही बाबा की गुणों से बनी हुई है। ऐसी चक्रधारी दीदी के द्वारा आज आप साकार बाबा के साथ के अनुभवन से हमारी झोली भरेंगे। चक्रधारी दीदी जी, आज दीदी की मुख से सुनेंगे बाबा के साथ का अनुभव। ओम शांति। दीदी जी,
ओम शांति। आप सबको जब योग में बैठा देखा, लगा तो नहीं कोई योग में बैठे हैं, कोई दो चार पांच जरूर बैठे होंगे, बाकी बड़े आराम से जल पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोन भी देख रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भट्टी करने के लिए आए हैं या वो चेंज हुआ ज्ञान सरोवर को स्मृति में रख, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या बात है, वाइब्रेशंस आपसे कोई ऐसे पावरफुल नहीं आ रहे, बड़े बैठे हैं, जो मिल जाएगा ठीक है। कोई चीज को ग्रहण करना होता है तो ग्रहण करने वाले की अपनी शक्ति बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर अपने प्रति वो लगन नहीं होगी, वो प्यार नहीं होगा, लेने की वो श्रेष्ठ भावना नहीं होगी, देने वाला कितना भी दे आप ले नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है, मान लीजिए कनस्तर रखा हुआ है और किसी को पता चला कि बहुत भारी कनस्तर है, तो वो पूरा जोर लगा के उठाता है और गिर जाता है, क्योंकि कनस्तर तो हल्का सा था और उसने सारी शक्ति इकट्ठी कर ली, उठाया और गिर गया, नहीं उठा पाया। और एक है कि कनस्तर भरा हुआ है, समझता है खाली है, तो वो उठाने लगता है तो कनस्तर तो हिलता भी नहीं है, क्योंकि उसे अपनी शक्तियां कलेक्ट करनी पड़ेंगी उस कनस्तर को उठाने के लिए। और जब पता चला उसको भरा हुआ है, अब वो अपनी शक्तियों को कलेक्ट करके उठाता है तो उठा लेता है। ठीक ईश्वरीय ज्ञान को लेने के लिए भी नाश्ता आप सबने किया हुआ है, भारी कर लेते हैं, ठीक है, परौंठी भी है, उपमा भी है, चने भी है, सोचे खा लो, खाना तो फिर एक डेढ़ बजे मिलेगा, तो नशा चढ़ा हुआ होता है कई बार, और कई बार स्वादिष्ट लगता है, या शायद कोई ना भी स्वादिष्ट समझ के चलो खाने लिए खा लिया, तो इस समय थोड़ी सुस्ती आती है। आपका कसूर नहीं है, अनाज थोड़ा नशा दिलाता है, और ईश्वरीय नशे की स्थिति नहीं होती तो ज्ञान की शक्ति को हम ग्रहण नहीं कर पाते। मैं सुन रही थी पुष्पा बहन जी, कैसे ज्ञान को बढ़ाया जाए, अविनाशी किया जाए, बहुत नशे की बातें सुना रही थी, जब मैंने यहाँ आके देखा तो आप तो आनंद मौज में बैठे हैं, ठीक है। या तो ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है पूरी, इसके कारण भी कोई बातें सही रूप से बुद्धि में बैठती नहीं है, तो पूरा ले नहीं पाते। तो मुझे ऐसा आता है कि मैं आपको ज्ञान नहीं सुनाने बैठी, क्योंकि इस समय ज्ञान सुनाने की समय नहीं है। कुछ हल्की हल्की बातें जरूर मैं प्यारे बाबा के यज्ञ की आपको सुनाऊंगी, और धीरे धीरे सुनाऊंगी, ताकि ट्रांसलेशन करने वाला ट्रांसलेशन कर सके। कौन है जो ट्रांसलेशन से ही सुनते हैं, हाथ खड़ा करें तो पता चलेगा कितने हैं, थोड़े से हैं या ज्यादा है। अच्छा, बहुत सारे हैं। आप लोगों को ट्रांसलेशन मिलती है तभी आप सुन पाते, समझ पाते, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात सुना के फिर शुरू करती हूँ क्लास, क्योंकि पहले यज्ञ का सिस्टम होता था कि दोपहर को 12 बजे भोग लगता था, क्योंकि खाने का टाइम तो दोपहर का ही होता है, और उस समय कई अपनी दुकान छोड़ करके ऑफिस नजदीक है तो थोड़ा समय छुट्टी करके माताएं अपने घरों से भी पहुंच जाती थी बाबा का भोग अटेंड करने के लिए। ये बहुत शुरू की मैं बात आपको सुना रही हूँ, जब इस यज्ञ के सेवाएं शुरू हुई, और उस समय भोग लगाने के लिए जो सामने बैठती थी बहन या भाई, अधिकतर बहन ही थी जिनको ध्यान में जाने का वरदान प्राप्त था, वो साक्षात्कार में जाकर भोग लगाकर आती थी। अगर हमने कोई संदेश उनको दिया तो वे बाबा को संदेश सुना करके और बाबा से हमारे लिए संदेश लेकर आती थी। तो 12 बजे जब एक बार भोग लगा तो संदेशी सामने बैठी थी और भोग लगाया, और आने पर उसने संदेश सुनाया कि मैं जब भोग लगा रही थी तो मैंने क्या देखा, बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और स्वीकार करके मुझे संदेश दिया कि जो मेरे बच्चे क्लास में सोए हुए हैं, सुस्ती में हैं, उनको मेरा याद प्यार देना। तो संदेशी बिचारी बड़ी हैरान हुई कि भोग तो सबने लगाया और बाबा ने संदेश दिया जो सोए हुए हैं या सुस्ती में बैठे हैं उनको मेरा खास याद प्यार देना। तो संदेशी खड़ी हो गई, लेकिन बाबा को पता चल गया कि ये बच्ची पूरा समझ नहीं पा रही, कुछ जानना चाहती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम सोच रही हो कि बाबा ने यही संदेश दिया। बाबा ने कहा, क्यों ये मैंने संदेश दिया, क्योंकि जो बच्चे जाग रहे हैं, चेतन बच्चे हैं, वो मुझे अपनी याद प्यार दे भी रहे हैं और मेरा रिटर्न में याद प्यार ले भी रहे हैं, और जो बच्चे सोए हुए हैं और सुस्ती में बैठे हैं वो ना तो याद प्यार दे रहे हैं ना याद प्यार ले रहे हैं, इसलिए मैं उनको याद प्यार भेज रहा हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप भी सो जाना, और ये समझना हमें भी याद प्यार आ जाएगा। ये मैंने केवल मात्र उस समय का एक उदाहरण सुनाया कि रहम दिल कल्याणकारी बाबा, उसको सभी बच्चों से बहुत प्यार होता है। वो ये समझते हैं, होशियार तो होशियार हैं, लेकिन कमजोरों को मुझे होशियार करना है, उनको भी बलशाली करना है, किसी को भी बाबा छोड़ता नहीं। दूसरा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि बाबा ने अभी वाणी चलाई और वाणी में बाबा ने कहा कि बाबा कहता है कि तुम व्यक्त शरीर में हो, लेकिन अपने को जितना जितना अव्यक्त बनाते जाओगे आपका मेरे से मिलन होता रहेगा। इसलिए बच्चे तुम मुझ अव्यक्त को व्यक्त में भुला करके क्यों मिलना चाहते हो? मैं कब तक तुमसे मिलूंगा व्यक्त में आकर? क्यों नहीं तुम अव्यक्त बन जाओ तो तेरा मेरा अव्यक्ति वतन में मिलन हो जाएगा। और जब साकार बाबा अव्यक्त हुए थे तब बाबा के ये महावाक्य चले थे कि आपका बाबा गया नहीं है, केवल उसने देश बदला है और वेश बदला है। देश साकार था, अभी अव्यक्त देश हुआ। वेश साकार स्थूल था, अभी अव्यक्त स्वरूप हुआ। और बच्चों को भी अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त वतन में बाबा से मिलन मनाना है। साकार में जब बाबा थे तो हम बच्चे मिलने के लिए जाते थे तो कई बार पार्टीज बढ़नी शुरू हो गई तो दो दो दिन भी बाबा से मिलने का नंबर नहीं आता था। तो बच्चे बड़े मन में बुखलाते थे कि हम आए हैं बाबा के घर लेकिन हम बाबा से दो दिन से मिले ही नहीं। और मिलते थे बाबा तो बाबा को मालूम है आज 10 ग्रुप से बाबा को मिलना है, तो जरूर है थोड़ा थोड़ा टाइम देते थे बाबा और बच्चों से मिलते थे। जब अव्यक्त हुए बाबा तब बाबा ने कहा बच्चे, बाबा का अव्यक्त वतन का दरवाजा सदा ही खुला है, कभी भी वो दरवाजा बंद नहीं होगा। और तुम्हें मिलने के लिए इंतजार नहीं करनी होगी। जिस समय मुझ प्यारे पिता से मिलना चाहो उस समय और जितना मिलना चाहो, जितनी देर मिलना चाहो उतनी देर मिल सकते हो। अब हम सब अपने आप से पूछें कि साकार में बाबा मिला, अव्यक्त बाबा साकार में आकर बच्चों से मिला, लेकिन सदा यही संदेश और आदेश दिया अपनी अवस्था इतनी अव्यक्त बना लो कि जब चाहो जिस समय चाहो बाबा से उस समय और उतना ही समय तुम मिल सकते हो। तो भी हमें अपनी स्थिति को ऐसा श्रेष्ठ और ऐसा ऊंच बनाना है। जिस पर मैं एग्जांपल देती हूं कि एक समय था कि संदेशियां बाबा को भोग लगाने जाती थी। आज भी मधुबन में संदेशी भोग लगाती है, लेकिन लॉ अनुसार बाबा ने सब सेवा केंद्रों में संदेशियों द्वारा भोग लगाना मना कर दिया था। केवल मधुबन में भोग लगा, बाकी सब जगह पर योग से बाबा को भोग लगाओ, अव्यक्त स्थिति से भोग लगाओ। तो मैं अपना अनुभव एक बार का सुनाती हूँ, उस समय का जब संदेशियां भोग लगाती थी। मैं उस सेवा केंद्र से शुरुआत में थी जो सारे विश्व का पहला सेवा केंद्र दिल्ली कमला नगर में था, जहां शुरू में अन्य दादियां भी रही, और जब मैं आई उस समय गुलजार दादी जी वहां रहते थे और जगदीश भ्राता जी रहते थे। बहुत सी बहनें और भाई जिनको दिव्य साक्षात्कार का वरदान था, और वो साक्षात्कार में जाकर के बाबा को भोग लगाते थे, स्टेज पर उनको बिठाते थे, भोग सामने रखते थे और वो भोग लगाकर आते थे और संदेश लेकर आते थे। अचानक एक बार सब संदेशियां कहीं ना कहीं अन्य सेंटरों में भोग लगाने के लिए चली गई, लेकिन कमला नगर सेंटर जहां मैं रहती थी वहां भोग लगाने वाले कोई भी संदेशी क्लास में नहीं थे। तो जब संदेशी नहीं होगी तो जरूर है जो निमित्त टीचर बहन होगी वो बाबा को भोग लगाएगी। तो हमको कहा कि दीदी आज तो आपको ही भोग लगाना है, चलो आप भी अव्यक्त वतन में चलना, अव्यक्त बाबा से मिलन मनाने के लिए। जो मैं बोल रही हूँ सबको समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करो, सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं तो मैं और धीरे बोलूँ ताकि आप सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए। इतनी दूर से आप आए हैं दाता के घर में, तो दाता आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बात सुना रही थी कि कोई संदेशी जो भोग लगाती थी क्लास में नहीं आई, तब मुझे कहा कि दीदी आप ही संदेशी बन के बैठो और बाबा को भोग लगाओ। स्वाभाविक है जब संदेशी नहीं तो टीचर बहन को बैठना होगा, लेकिन मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त नहीं था। जैसे हमारी मामा ने कभी दिव्य दृष्टि में कुछ नहीं देखा, लेकिन बाबा को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त। तो हमको तो दिव्य दृष्टि का वरदान नहीं था, दिव्य बुद्धि से बाबा ने जो अनुभव कराया वो सब अनुभव करते रहे। तो मैं सामने बैठ गई और रिकॉर्ड चलता है, चल उड़ जा ये पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। हे आत्मरूपी पंछी उड़ जा, अब ये देश तेरा नहीं है, ये पराया देश है, तो अपने देश चले जा। तो जब मैंने गीत की एक लाइन सुनी तो मेरे मन में आया कि संदेशी तो ध्यान में चली जाती थी और बाबा को देखती थी और बाप दादा से मिलन मना करके बाप दादा को भोग स्वीकार कराती थी, और मुझे तो दिव्य दृष्टि का वरदान नहीं। गीत कह रहा है चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना, मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो जाती नहीं हूं। गीत चलता रहा लेकिन मैं जैसे मन ही मन बाबा को ये कह रही हूं, तो मुझे सेकंड में एक विचार आया, जैसे मुझे बाबा कह रहा है कि बच्ची तुम ये किसको कह रही हो कि मुझे तो दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, ये किसको कह रही हो? ऐसे जैसे मुझे बाबा कोई ध्यान में नहीं, कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा, मन से एक आवाज आती है और मैं उस मन की आवाज को पकड़कर क्या कहती हूँ, बाबा मैं आपको कह रही हूँ कि मैं कभी साक्षात्कार में नहीं गई। तब फिर मुझे बाबा की तरफ से जैसे एक आवाज लगती है, ये विचार आ रहा है कि जब तुम ये कह सकती हो कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया, बाबा मैं आपको भोग कैसे लगाऊंगी, तो क्या तुम ये नहीं कह सकती हो कि बाबा मैं भोग लगाने आ रही हूँ, आप मेरा भोग स्वीकार कीजिएगा। अगर वो बात तुम मुझे कह सकती हो तो ये भी तो कह सकती हो। तो मैंने कहा हाँ ये भी तो मैं कह तो सकती हूँ। तो कुछ क्षणों में मैंने भोग रखा था, गीत चल रहे, मैंने कुछ नहीं सुना गीत, मैं तो बाबा के साथ ही लेन देन कर रही हूँ। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ मन से ही, आप मेरा भोग स्वीकार कीजिए, मन से बाबा को कहा। कहकर थोड़ी देर में बैठी रही, फिर जैसे पता नहीं दो तीन कितने गीत चल गए मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाबा के रूह रिहान में ही लगी हुई थी। तो जैसे संदेशी आती है हिलती है ऐसे करती है, तो पता चलता है उनको संदेशी वापिस आ गई। तो मैं थोड़ा सा हिली, फिर मेरे को संकल्प आया कि संदेशी तो जब वापिस आती है तो बाबा से संदेश लेकर आती, मुझे तो बाबा ने कोई संदेश दिया ही नहीं, तो मैं क्लास में संदेश क्या सुनाऊंगी। तो मैं फिर बाबा के पास बैठती हूँ, फिर मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मैंने तो कोई संदेश आपने दिया ही नहीं, तो मैं सबको क्लास में जाके क्या सुनाऊंगी। इतने में फिर बाबा का मन से ही वो संकल्प, जैसे बाबा दे रहा है संकल्प आता है, जैसे आज तुमने मुझे भोग लगाया है दिव्य बुद्धि के आधार से कहकर कि बाबा भोग स्वीकार करो, ऐसे मेरे सब बच्चों को संदेश देना कि वो मुझे भोग लगाएं, दिव्य बुद्धि से मेरे से बातचीत करते हुए मुझे भोग स्वीकार कराएं। संदेशी ना हो तो भोग कैसे लगाएं, ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए। तो जैसे मेरी बात पूरी हुई, मैं वापस आ रही हूं, आई हूं, तो उन्होंने मेरे आगे माइक रख दिया। तो माइक पर मैंने अपना जो अनुभव किया वो अनुभव सुना दिया और सबको कहा कि जैसे आज मैंने बाबा को भोग लगाया है, बाबा ने संदेश दिया है कि मेरे सब बच्चों को कहना ऐसे ही मुझे भोग लगाया कर। तो मैं ये संदेश आपको भी सुना दिया। चाहे हम बैठे हैं, भोग रखा है, संदेशी कोई बैठी है वो भोग लगा रही है, हम सामने बैठे हैं, लेकिन हम ऐसे जैसे यहाँ नहीं बैठे, जहाँ संदेशी भोग लगाने के लिए सूक्ष्म वतन में बाप दादा को स्वीकार कराएगी, ऐसे अनुभव करो मन से कि मैं सूक्ष्म वतन में बैठा या बैठी और सूक्ष्म वतन में बाप दादा मेरे सन्मुख हैं और मैं मन से बाप दादा को कह रही हूँ, प्यारे बाबा मेरा भोग स्वीकार कीजिए। आप बताओ क्या ये भोग लगाना मुश्किल है? तो बाबा ने कहा, मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि दिव्य साक्षात्कार से दिव्य बुद्धि का वरदान श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि समझ सकती है। साक्षात्कार में कई दृश्य बाबा दिखाते हैं, लेकिन कई बच्चे उन दृश्यों को समझ नहीं पाते। ये दृश्य जो बाबा ने दिखाया इसका मतलब क्या था? और कई बार दिव्य बुद्धि वाले जो बच्चे हैं वो मेरी बात को इशारे में समझ जाते हैं। तो इस प्रकार बाबा को जब भी भोग लगे ऐसे ही भोग लगाना। अब मान लीजिए संदेशी ट्रांस में जाती है और वो गांव की बहन है, ध्यान में गई है, उसे पता ही नहीं ठंडा कमरा क्यों है, कारण क्या है। कहती है मैं गई वहां बर्फ वाले कमरे में, बाबा ने मुझे बिठा दिया। अब बर्फ वाले कमरे में बिठाने का क्या मतलब? अब उसको नहीं बताना आ रहा कि एयर कंडीशन का रूम बाबा ने जैसे मुझे अनुभव कराया। अब दिव्य बुद्धि वाला उस बात को समझ करके उसका उत्तर देता है और दिव्य दृष्टि वाला बुद्धि में समझ ना हो तो पूरा समझा नहीं पाता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, जितना हो सकता है देह में रहते हुए अपने को देह से न्यारे, मैं आत्मा हूँ बच्चे, ये अभ्यास पक्का कर लो। क्यों ये पक्का कर लो? क्योंकि आप सब अपने जीवन में चाहते हो परिवर्तन आ जाए। क्या परिवर्तन आ जाए? हमारा जीवन शांत हो जाए, हमारे जीवन में कोई अपवित्र संकल्प भी न स्पर्श करे, हमारा जीवन दुनिया की प्राप्तियां ना भी हो तब भी हम संतुष्ट रहें, आनंदित रहें, यही तो हम चाहते हैं ना। ज्ञान हमको जितना भी है लेकिन हम बेसमझी का कोई बोल कर्म या संकल्प ना करें। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये परिवर्तन कैसे आएगा? बच्चे जब आपको ये याद रहेगा कि देह तो नाशवान चोला है लेकिन मैं देह नहीं, मैं चेतन शक्ति आत्मा हूं, और आत्मा में सातों गुण हैं, आनंद भी है, प्रेम भी है, शांति भी है, ज्ञान भी, सब कुछ है ना आत्मा में। तो जब आत्मा अपने स्वमान में और अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा रहेगी तो जो हमारे संस्कार हैं या स्वभाव हैं उनमें परिवर्तन आ जाएगा, अपने आप परिवर्तन आएगा। क्योंकि आत्मा की जो मूल नेचर है, असली स्वभाव है, बहुत शांत, बहुत पवित्र है, आनंद में है, सुख में है। तो जब मैं आत्मा अपने स्वरूप में आती चली जाती हूँ तो मेरा स्वभाव क्रोधित नहीं रहेगा, शांत हो जाएगा और धीरे धीरे परिवर्तन आता जाएगा। मुझे अनेक प्राप्तियां प्राप्त होने पर भी संतुष्टि नहीं थी लेकिन आज मुझे कम प्राप्तियों में भी संतुष्टि है। दाता का दिया बहुत है, जितना है उसका ही सुख ले लें। धीरे धीरे आपके जो स्वभाव हैं, संस्कार हैं, मिलन मिलान है, ये सब आपका अपने आप बदलता जाएगा क्योंकि आपकी नेचर नेचुरल बन जाएगी। अभी हमने अपने स्वरूप को बुलाया हुआ है, सारा दिन तो हम स्वयं को दे समझते और फिर हम चाहते हैं कि हमारे में परिवर्तन आ जाए, हमारे में शांति आ जाए, संतुष्टता आ जाए, प्रेम आ जाए, आनंद आ जाए, खुशी आ जाए। कहाँ से आएगी? कहीं आकाश से तो नहीं आएगी, धरती से तो नहीं निकलेगी। ये मुझ आत्मा का स्वभाव है। अब साकार बाबा को हमने देखा, अपनी मामा को देखा, कभी उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे शांति चाहिए, चले कहीं एकांत में बैठें, शांति मिल जाए, किसी पहाड़ों पर जाएं, थोड़ी शांति मिल जाए, ये प्राप्तियां प्राप्त हो जाएं, तो हमें तृप्ति मिल जाए, संतुष्टता मिल जाए। नहीं, बाबा मामा को सदा अडोल एक मूर्ति रूप देखा क्योंकि बाबा मामा ने अभ्यास प्रथम लेसन का बहुत किया। और हम अपने आप से पूछें, यहां बच्ची में आप विशेष आए हैं, स्वयं से स्वयं पूछो, सारा दिन उठते बैठते चलते खाते याद रहता है मैं आत्मा हूं? याद का मतलब नॉलेज याद नहीं, लेकिन रियली मैं आत्मा हूं। मुझे एक बार साकार बाबा ने पूछा, बच्ची तुम अपने आप को आत्मा कितनी देर समझती हो? मैं अभी नहीं थी ज्ञान में, ज्यादा पुरानी नहीं थी, तो मैंने बाबा का बोल सुनते ही मैंने कह दिया, बाबा मैं सारा दिन अपने को आत्मा ही समझती, क्योंकि मुझे मालूम था आत्मा की नॉलेज मिल गई है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तब मुझे बाबा ने कहा, कल मुझे आकर बताना कितनी देर तुमने अपने को आत्मा समझा। तब बाबा ने कहा, जब स्नान करने जाना तो बाहर नल होते थे, हमारे बाथरूम में नल नहीं होते थे, तो मधुबन में जब बाल्टी भरना तो हाथों पे नौकरों को ऑर्डर देना कि ये बाल्टी भरो, नल को खोलकर बाल्टी भर लेना, फिर ऑर्डर देना चलो बाथरूम में रखो बाल्टी को, ये तुम्हारे हाथ आपके वर्कर्स हैं, कार्य करता है और तुम मालिक है। और जब इस गाड़ी को स्नान कराने लगे तो ख्याल रखना इस गाड़ी को स्नान करा रहे हैं, मैं नहा रही हूं नहीं, ये गाड़ी को स्वच्छ किया जा रहा है, ये अभ्यास करना। ऐसे बाबा ने खाने के टाइम का बताया, जब खाना खाने लगना तो याद रखना ये गाड़ी को पेट्रोल है, प्रॉपर पेट्रोल जो इस गाड़ी के लिए उचित है, इसको ठीक जचता है, वो भोजन इसको दे रहे हैं। तीन चार बातें मुझे बाबा ने कही कि कल इसका अभ्यास करके फिर मेरे पास आना, फिर मुझे बताना कितनी देर तुमने आत्मा समझा। और जब सुबह नहाने के लिए मैंने बाल्टी उठाई तो बाल्टी उठाते तो मुझे याद रहा कि मैं आत्मा ने ऑर्डर दिया, उसके बाद तो मैं सब भूल गई। स्नान करने से एक सेकेंड तो मुझे याद आया कि गाड़ी को नहलाना, फिर तो सब भूल गया। मैंने सारे दिन की दिनचर्या में देखा, बहुत कम टाइम मैंने अपने को आत्मा समझा और शरीर मेरे कार्य करता है ऐसा समझकर मैंने कर्म कराए, तो मुझे बहुत शर्म आई कि मैंने तो बाबा को कहा था कि बाबा मैं सारा दिन अपने को आत्मा समझती हूँ और ये तो मैं बहुत ही थोड़ा टाइम समझती हूँ। क्लास पूरी हो गई, बाबा ने मेरे से नहीं पूछा, मैंने सोचा मैं बच गई, बाबा ने नहीं पूछा, पूछता तो मैं क्या उत्तर देती। घर था तो पांडव भवन के ऐसे आंगन में बाबा इधर से अपने कमरे से आ रहे थे, मैं इधर से अपने कमरे से आ रही थी, ऐसे खड़ी थी, तो बाबा ने कहा बच्ची इधर आओ। मैं चली गई हंसती हुई, क्योंकि अभी वो क्लास का टाइम तो है नहीं, मैं गई बाबा के पास। बाबा ने कहा बच्चे कितनी देर अपने को आत्मा समझा। मैं सोचा अरे टीचर ने पकड़ लिया मुझे, तो मैंने कहा बाबा बहुत थोड़ा टाइम। तब बाबा ने कहा ये नॉलेज सहज है लेकिन इस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना, लागू करने के लिए बच्चों को बड़े अटेंशन की और मेहनत की जरूरत है, बार बार अपने को स्मृति दिलाने की जरूरत है और उस स्मृति का स्वरूप बन के चलने की जरूरत। अब मैं बैठी हूँ, आप सन्मुख बैठे हैं, मैं बार बार चेक कर रही हूँ कितनी देर मुझे स्मृति है कि सब आत्माएं मेरे प्यारे बाबा के अनमोल रतन मेरे सन्मुख बैठे हैं और मैं आत्मा इस मुख द्वारा बाबा के महावाक्य सुना रही। बार बार अटेंशन रखनी पड़ती। आप भी स्वयं से पूछो हम कितनी देर, जिसको बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को सुनाता हूं, और कभी कभी बाबा कहते थे हे आत्मा सुनती हो, लेकिन आत्म अभिमान की स्थिति ना हो तो देह भान में ही तो सुने। और कहते हैं खास बाबा कहते हैं संग का परहेज करो, जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। अब आप कहेंगे हम किसी बुरी सोबत में तो जाते नहीं, हमारा कोई बुरा संग है ही नहीं। बाबा कहते हैं वो संग की बात नहीं करता हूं जो झूठा है, नाशवान है। और ये शरीर नाशवान है क्यों? कि ये झूठा है, नश्वर चीज सच्ची नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं सारा दिन तेरा झूठ के साथ संग है, आसपास सारी दे 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 झूठ के वातावरण में तू रहता है और झूठ के संग में तू रहता है। कितनी देर तो अपने को देह से न्यारी आत्मा समझता है, तो देह के अभिमान का जो संग है वो हमको अपना रंग दिखाता है। कहीं हमको नफरत आती है, किसी से हमारा प्यार हो जाता है, किसी से हम घृणा करते हैं, किसी को हम रिस्पेक्ट वर्दी बोल बोलते हैं, किसी को नफरत के बोल बोलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम इस संग में, झूठ के संग में सारा दिन रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बार बार याद करो, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। देखते हुए भी आंखों से मैं आत्मा देख रही हूं, मुख से मैं आत्मा बोल रही हूं। साकार बाबा ने क्या अभ्यास किया? यही तो अभ्यास किया। जब बाबा साकार से अव्यक्त हुए तो बाबा की ढेर डायरियां निकली। डायरियों में क्या लिखा हुआ था? मैं आत्मा हूं। नारायण उनके लौकिक बेटे का नाम था, नारायण आत्मा है। यशोदा उनकी पत्नी का नाम था, यशोदा आत्मा है। पुट्टू बेटी का नाम था, पुट्टू आत्मा है। सबको आत्मा है, आत्मा है। इस निगाह में, इस दृष्टि की स्थिति बनाई और इस दृष्टि ने जिनके साथ बाबा के संबंध थे उनकी दृष्टि को भी बदल दिया। बाबा की दृष्टि ने उनकी दृष्टि को बदल दिया। बाबा की पत्नी ये कहती थी कि जिसको मैं पति भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखती थी कि पति मेरा परमेश्वर है, लेकिन जब बाबा में बाबा आया और बाबा का ऐसा पुरुषार्थ कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, तो मैं बाबा को कभी देह संबंध से अगर देखती तो मुझे लगता मैंने कोई पाप किया है। मैंने क्यों देहिक रूप से बाबा को देखा? बाबा तो चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है। मैं बाबा को कभी भी अपने वर्क पर जाते थे तो सुनाती थी, मैं पहले पूजा करती थी तब बाबा को गद्दी पर जाने देती थी, क्योंकि मैं उसे प्रभु भाव से मानती थी। लेकिन एक समय ऐसे आया कि मैं बाबा को उस रिगार्ड से देखती थी, ये कोई दिव्य और श्रेष्ठ महान आत्मा। और बाबा के बच्चे जो कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, छोटे हैं, लेकिन वो क्या कहते थे? हमारा बाबा भगवान हो गया है। उन्हें और कुछ नहीं कहना आता था, नहीं स्पष्ट कर सकते थे, कहते थे बाबा हमारा भगवान हो गया है। तब साकार बाबा बच्चों को कहते थे, नहीं बच्चे मैं भगवान थोड़ी हो गया हूं। कहता था नहीं, आप भगवान हो गए। तो बाबा ने आत्म स्थिति की दृष्टि को इतना जमाया। तो मैं आज आप विशेष भट्टी करने के लिए आए हो और मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि हम सब बाबा के बच्चे अपने जीवन का परिवर्तन चाहते और श्रेष्ठ परिवर्तन चाहते हैं। मेहनत करके परिवर्तन भी नहीं लाना चाहते, आराम से परिवर्तन हो जाए। और आराम से परिवर्तन हो जाएगा जब हम अपने स्वरूप की स्मृति में रहेंगे। हाँ, ये जरूर है, याद रखना, जो बार बार देह समझकर हमने कर्म किए हैं, वो देह अभिमान के किए हुए कर्म, बने हुए संस्कार, वो हमें अच्छी बात करने नहीं देते। हम समझते हैं मुझे आत्मा अपने को समझना है, लेकिन ये जो देह अभिमान का बना हुआ संस्कार है, वो हमें देही अभिमानी बनने नहीं देता। तब बाबा हम बच्चों को कहता है, एक तरफ बने हुए संस्कार जो देह अभिमान के हैं, उनको विनाश करना है, और एक तरफ देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहे अपने दिव्य संस्कारों का निर्माण करना है। निर्माण करने के लिए आत्म स्मृति के अभ्यास की जरूरत है, और विनाश करने के लिए आत्मा को शिव बाबा के संबंध में रहकर लगन की अगन जगाने की जरूरत है। केवल लगन की अगन जलाना चाहो वो भी नहीं जगेगी, क्योंकि पहले आत्मा अपने स्वमान में और स्वरूप में जब तक नहीं आएगी, तब तक ईश्वर से संबंध जोड़ नहीं पाएगी। जोड़ना चाहेगी, व्याकुल होगी कि मेरा बाबा से संबंध जुड़ जाए, लेकिन देह अभिमान के जो बने हुए संस्कार हैं, वो हमें कभी देह, कभी देहधारी, कभी देह संबंध, कभी देह का जगत, कभी देह के पदार्थ, इनमें हमारे मन बुद्धि को घुमा देगी। इसलिए बाबा कहता है, थोड़ा समय निकाल करके अपने को आत्मा समझ करके, मुझ परमात्मा को अपना पिता जानकर मेरी याद में बैठो। ये याद, ये लगन, ये वो अगन है जो तेरे देह अभिमान के बने संस्कारों से तुझे मुक्ति देगी। और जिन संस्कारों को तू बनाकर चलना चाहती है आत्मा, उन संस्कारों में तू चल सके। अब बच्ची में जब हम आए हैं, तो हमें बहुत सुंदर मौका है, चाहे सभी का संगठन है, लेकिन ये संगठन भी बड़ा दिव्य, बड़ा अलौकिक और बड़ा न्यारा है। कल बाबा के महावाक्य बहुत अच्छे थे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करता है, ये वो करता है। बाबा कहते, ये भी अपवित्रता है, ये भी छूत है। क्यों किसी अछूत बातों को अपने पास रखते हो? क्यों अपने जीवन की पवित्रता को किसी की कमजोरी से अपने जीवन को अपवित्र क्यों बनाते हो? कौन क्या कैसा है वो जाने, अगर मैं कुछ जानकर उनके लिए कर सकती या कर सकता हूँ, तो शुभ भावना और शुभ कामनाओं का सहयोग दे। दाता, इन्हें भी सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, सद्मति दो, ताकि श्रेष्ठ कर्म करे। बाकी ये ऐसा है, ये वैसा है, अब हम आप सभी परफेक्ट तो कोई बने नहीं, सभी परफेक्ट बनने की फैक्ट्री में लगे हुए हैं। अब परफेक्शन आएगी, लेकिन आई तो नहीं। और अगर हम एक दो की कमजोरियां और कमियां और गिरी हुई बातें अगर देखने लग जाएंगे, तो मेरी अपनी शुद्धि नाश हो जाएगी, मेरी अपनी पवित्रता में कमी आ जाएगी। बाबा ने कहा, कल खास कहा, उनको वैष्णव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अशुद्ध को टच करते। तो बच्ची के अंदर बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, किसी की कमी कमजोरी की चिंतन या चित पर हम उसको ना रखें। और अगर किसी की कमजोरी है और मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं उनको ईश्वर की शक्ति का इतना योगदान दूं कि दाता ये आत्मा भी इस कमजोरी से मुक्त हो जाए। ऐसी शुद्धि और ऐसी पवित्रता हमारे जीवन में आ जाए। तो आप सभी बच्चे करने आए हैं, मैं समझती हूँ। मैं बिल्कुल शुरू की बात बताई आपको, छोटी छोटी बातें, कोई ज्ञान की गहन बात नहीं सुनाई, क्योंकि ये दोपहर का समय होता है, ये गहन बातें सुनने का नहीं है, लेकिन बड़ी साधारण बातें सुनाई। मुझे ऐसा आता है अगर दो बातों का भी आप अटेंशन रख लो, बहुत बड़ी की सफलता होगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका क्रोध नहीं जाता, जोश नहीं जाता, मोह नहीं जाता, ईर्ष्या नहीं जाती। आप समझते हो मेरे में कमी है, देखो नहीं जाते। बाबा कहते कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो बच्चे, तो आत्मा अपने स्वमान और अपने स्वरूप को बार बार स्मृति में लाएगा, तो जो तेरा स्वभाव आत्मा के अनुकूल होना चाहिए वो नेचुरल बन जाएगा, धीरे धीरे वो बन जाएगा। तो सोच नहीं ये कमी है, ये कमजोरी है, क्या हुआ? अगर मेरे पास आकर भी तेरी कमियां दूर नहीं हुई तो कहां दूर होगी? इसलिए बाबा कहते मैं तो धोबी भी हूं, मैं तो मैले कपड़े स्वच्छ करने आया हूं। तो आप ऐसा सुंदर समय आपको मिला, इतना सुंदर स्थल आपको मिला, सतोगुनी आहार आपको मिला, वातावरण अच्छा मिला, इसमें जरूर है आप सब लाभ लेके जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
खिलता नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस बस तुम्ही तुम हो, तेरी पलकों की छाया।